SBS हिंदी हमारी कहानियाँ फेसबुक पर।
इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं मिर्जापुर 2 के डायरेक्टर और राइटर गुरमीत सिंह और पुनीत कृष्णा। आपका SBS हिंदी में बहुत बहुत स्वागत है।
धन्यवाद।
सबसे पहले तो मेरा सवाल यही है कि IFFM में आपको बेस्ट सीरीज का पुरस्कार मिला है, कितना खुशी देता है ये पहले गुरमीत से मैं पूछना चाहूंगा।
बहुत खुशी देता है क्योंकि काफी टाइम से मिर्जापुर को प्यार मिल रहा है और अब ये इंटरनेशनल अवार्ड पहला है जो हमें मिला है, तो अगर ऑस्ट्रेलिया में भी पसंद किया जा रहा है हमारा शो तो हमें इस तरह खुशी कुछ नहीं हो सकती। और
पुनीत आप?
हाँ, बहुत बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि ये इस अवार्ड का मिलना है बताता है कि लोग पसंद भी कर रहे हैं और साथ में वो आगे बढ़कर ये पब्लिक को बताना भी चाह रहे हैं कि हमने पसंद किया है, तो मतलब कि अच्छा है ये शो देखने के लिए, जो कि बहुत अच्छी फीलिंग है। आपने किसी चीज पर कई साल काम किया हो और फिर आप उसको बाहर निकाल के सामने वाले के आगे रख दें और फिर वो उसको पसंद कर बैठे, तो इससे बढ़िया क्या हो सकता है, तो बहुत बहुत अच्छा लगा।
गुरमीत आपसे पूछना चाहूंगा कि वैसे तो हम जब कभी भी अपना कॉन्टेंट को इमेजिन करते हैं, सोचते हैं कि इसे हम दर्शकों तक लेके जाएंगे, तो हमें बहुत उम्मीद होती है, लेकिन एक डायरेक्टर के तौर पर कब एहसास होता है कि आपने बुलजाई जो है वो मार दिया है, ये कंटेंट वाकई अच्छा है?
बहुत बहुत मुश्किल है ये जज करना रिलीज से पहले, और हर चाहे सीजन 1 हो चाहे सीजन 2 हो, हम बहुत ज्यादा नर्वस थे रिलीज से पहले। वो नर्वसनेस काम के प्रति नहीं थी, पर क्योंकि ऑडियंस ही हमेशा जज करती है कि उनको पसंद आया कि नहीं आया, तो फॉर ग्रांटेड तो कभी नहीं ले सकते पहले कि ये लोगों को पसंद आएगा ही आएगा। पर आई थिंक जो सबसे पहला हिंट होता है जब लगता है कि ये चीज़ अच्छी बन सकती है, वो तब है जब वो पुनीत के टेबल से आता है। तो अगर राइटिंग में ही मज़ा आ रहा हो तो मुझे लगता है वो आधे से ज़्यादा बैटल जीत जाते हैं। वो एक सबसे बड़ी चीज़ होती है कि जब आपको लगता है कि आपका कंटेंट स्ट्रॉन्ग है तो बहुत चांसेस होते हैं कि आप बुलजाई हिट कर पाओ।
मैं पुनीत आपसे पूछना ही चाहता था, गुरमीत ने आपका नाम ले ही लिया, खासकर से इस वक्त पर जब OTT का जमाना आ गया है और हमें ज्यादा समय मिल रहा है अपने किरदारों को पूरी तरह से दिखाने का, क्योंकि 3 घंटे के समय में कैरेक्टर्स की डेप्थ को समझना बहुत मुश्किल होता है, एक डायरेक्टर और राइटर का तालमेल ऐसे में कितना जरूरी होता है?
बहुत ज्यादा जरूरी है, पर जहां तक तालमेल की बात है एक लेखक और एक निर्देशक के बीच में, तो वो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि वो कुछ OTT से संबंधित स्पेशल बात है, वो फिल्म में भी जरूरी है वो तालमेल, मुझे लगता है बिना उनके तालमेल के फिल्म भी अच्छी बनेगी, उसमें गुंजाइश थोड़ी सी देखनी पड़ेगी, तो मेरे ख्याल से वो तालमेल तो हमेशा जरूरी है शो के केस में। जैसा कि आपने बोला कि हाँ, बाकी किरदारों को भी दिखाने में ज्यादा वक्त मिलता है, अब सिर्फ एक किरदार हीरो का दोस्त नहीं होता या हीरोइन की भाभी नहीं होती, उनकी अपनी जिंदगी होती है, उनकी अपनी अप्स एंड डाउन्स होते हैं जीवन के, तो उनको देखने और दिखाने में मजा आता है, जो कि मिर्जापुर में कर पाए। हमें हमारा लालच यही था कि मिर्जापुर के सारे किरदार जब आप उनको स्क्रीन पर देख रहे हो तो आप उनके साथ जुड़े हैं, आप ये मान के ना देख रहे हो कि अच्छा ये एक सीन देख लिया, अब हीरो तो अभी आएगा अगले सीन में, नहीं, ये बिल्कुल हमारी कोशिश थी कि ऐसा ना हो, और मैं उम्मीद करता हूँ कि हम वो करने में सफल रहे।
बिल्कुल पुनीत, राइटर का काम होता है लिखना, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन राइटर का काम होता है बहुत कुछ पढ़ना भी, बहुत कुछ ऑब्जर्व करना, तो जब आप कोई इतना बड़ा कोई प्रोजेक्ट लेते हैं जिसमें इतने तरह तरह के कैरेक्टर होते हैं, ऐसा बहुत मुश्किल होता है कि अपने आप को जो आपने पढ़ा है उसको छोड़ के कुछ नया लिख पाए, तो इंस्पायर होना अलग बात है, लेकिन क्या ऐसा होता है, ऐसी तकलीफ होती है कि ये कहीं मैंने देखा है, कहीं पढ़ा है, उसके जैसा तो नहीं जा रहा है, क्या मुश्किल हो जाता है काम राइटर का ज्यादा? हाँ, पढ़ने के बाद
बिल्कुल हो जाता है मुश्किल, और कभी कभी ये भी हो सकता है कि आपका मन ये कह रहा है कि ये आपने सोचा है लेकिन शायद आपने उसको 10 साल पहले कहीं पढ़ा था, तो उसके इसमें अपने मन को समझाना बहुत जरूरी होता है कि अगर कोई ये पॉइंट आउट करेगा कि यार ये मैंने देखा है 10 साल पहले या ये यहां से तो नहीं ले आया, तो फिर हम अपने आप को ये कहकर नहीं समझा लेंगे कि यार ऑडियंस नहीं पकड़ेगी, वो तो बेमानी होगी ना, तो उसके से बहुत जरूरी है कि फिर वो सीन कितना भी अच्छा हो वो लालच छोड़ दें और कुछ नया चेंज करें या कुछ नया लिखें, ताकि ये ना हो कि वो 10 साल पहले हमने कुछ देखा था तो उसको कॉपी कर लिया।
जी गुरमीत, वैसे ये सवाल मुश्किल भी हो सकता है और आसान भी हो सकता है, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि एक फिल्म को निर्देशित करने में और एक वेब सीरीज को करने में क्या फर्क है?
फर्क है भी और नहीं, जैसे वो पुनीत कह रहे थे कि बेयर बोन्स तो सेम वही चीज वही है कि आपको कहनी कहानी कहनी है कैमरा के थ्रू, एडिट के थ्रू, म्यूजिक के थ्रू, एक्टर्स के थ्रू, तो बेसिक प्रोसेस वही है, पर कुछ कुछ रूल्स, कुछ कुछ चीजें अलग है, इसपे फॉर्मेट अलग है। जैसे वही पुनीत ने बोला कि यहाँ पे हर कैरेक्टर का एक इम्पोर्टेंस है, उसको समझना कि इसका फ्लो क्या रहेगा, और प्लस फिल्म में जो एक थ्री एक्ट स्ट्रक्चर हम लोग बोलते हैं जनरली रहता है, तो उसका एक स्ट्रक्चर होता है। आई थिंक द प्रोबेबली द स्ट्रक्चर इज द बिगेस्ट डिफरेंस दैट यू वुड फाइंड डायरेक्टिंग द थिंग और अंडरस्टैंडिंग द मीडियम का स्ट्रक्चर। जैसे अगर आप शॉर्ट फिल्म कर रहे हैं तो उसका एक अलग स्ट्रक्चर होगा, उसका अलग ईथॉस होगा, उसकी अलग रिदम होगी, फिल्म की एक अलग रिदम होगी और इस फॉर्मेट की एक अलग रिदम है। और द सेकंड बिगेस्ट थिंग इज कि ये बहुत ही कोलैबोरेटिव मीडियम है, जैसे इसके अंदर भी दो डायरेक्टर थे, फिल्म में जनरली यू विल ऑलवेज हैव एक ही डायरेक्टर होगा, अनलेस सम पीपल हु वर्क टुगेदर एज ए टीम ऑलवेज, उसको छोड़ के एक ही वॉइस रहेगा, एक ही डायरेक्टर होगा। बट शो के अंदर जैसे एक शो रनर होता है जो पुनीत है, उनका वर्ल्ड है, उन्होंने लिखा है, उनके साथ हम लोग कोलैबोरेट करते हैं, प्लस दो डायरेक्टर हैं जो अलग अलग चीजें डायरेक्ट कर रहे हैं शो में, बट उनको इन सिंक रहना है और शो देखने वाले को कभी ये लगना नहीं चाहिए कि ये अलग अलग वॉइसेस ने डायरेक्ट किया है। तो उस हिसाब से गिव एंड टेक ज्यादा है शो के स्पेस में। फिर इवन विद द एक्टर्स, इवन विद द कैरेक्टर्स, जो एक्टर्स कंटिन्यूइंग अपना कैरेक्टर प्ले करते हैं आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, दे स्टार्ट नोइंग देयर कैरेक्टर और लिविंग देयर कैरेक्टर इवन मोर देन द राइटर कैन और इवन द डायरेक्टर कैन।
चैलेंजिंग क्या है गुरमीत, चैलेंजिंग क्या है, वेब सीरीज को डायरेक्ट करना या फिल्म को डायरेक्ट करना?
मतलब एक जैसे बहुत ही रैंडम एग्जांपल दे तो वही वाली बात है कि T20 वनडे और टेस्ट क्रिकेट वाली बात तो ये लॉन्ग फॉर्मेट को आप टेस्ट क्रिकेट लेके चलिए कि इधर सब कुछ टेस्ट होने वाला है। जैसे द शॉर्टर द फॉर्मेट गेट्स तो उसमें आप यू कैन गेट अवे विद अ लॉट मोर क्राफ्ट पर से एंड लेसर स्टोरी टेलिंग, दिस इज अ लॉट मोर अबाउट दैट।
लेकिन गुरमीत ये भी सच है ना कि टेस्ट मैच में अगर आप अच्छा स्कोर करते हो तो आप एक एस्टेब्लिश खिलाड़ी भी बड़े माने जाते
हो। बिल्कुल होप यही है।
पुनीत मेरा अगला सवाल आपसे है
जी।
कब आपको इस कहानी का ख्याल आया, कब आपने ये लिखनी शुरू की, कब आपको लगा कि इस कहानी को पर्दे पर लेके आना है, तो और किस चीज ने आपको इंस्पायर किया?
तो ये कहानी बहुत साल पहले से दिमाग में थी मेरे भाई के, हो गए होंगे काफी साल पहले, बहुत साल पहले गैंग्स ऑफ वसीपुर के आने से पहले। मैं बार बार ये चीज रिपीट कर देता हूँ क्योंकि जब गैंग्स ऑफ वसीपुर आई तो बड़ा दुख हुआ कि इस जॉनरा की पहली कहानी तो यार हमें सुनानी थी, अभी अनुराग साहब ने सुना दी वो कहानी, तो उसके पहले से दिमाग में थी ये कहानी। उसके बाद फिर जब हिंदुस्तान में OTT ने एंट्री ली तो यही समझ में आया कि क्या ये कहानी बेहतर होगी, उस समय एक फिल्म की तरह से सोची थी ये कहानी, तो उस फिर जब OTT की एंट्री हुई तो ये सोचा कि क्या ये कहानी OTT प्लेटफॉर्म के लिए बेटर होगी, क्योंकि इसके अंदर हम बाकी सारे कैरेक्टर्स की बात भी खुल के कर पाएंगे, जैसे कि हमने बोला कि सबकी जर्नी दिखा पाएंगे, इसमें वायलेंस को हम अलग तरीके से दिखा सकते हैं, इसमें कसवर्ड्स को अलग तरीके से दिखा सकते हैं जो कि उस दुनिया का हिस्सा है जिस दुनिया में कहानी सेट है, वहां पर लोग गन्स कैरी करेंगे उस दुनिया में लोग गालियां देंगे, तो इस लिहाज से फिर OTT अच्छा ऑप्शन लगने लगा। तो
पुनीत सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपने OTT का जिक्र किया, OTT कैसे ये इकोसिस्टम चेंज कर रहा है राइटिंग का और फिल्म मेकिंग का?
कई तरीकों से, एक तो ये कि तीन स्पेसिफिकली स्पीकिंग तीन कैटेगरी राइटर्स डायरेक्टर्स एंड एक्टर्स, इनके लिए एक बिल्कुल ही नई दुनिया ओपन हो गई। अब ये फ्राइडे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है मुझे लगता है, अब ये काफी हद तक उस स्टार सिस्टम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है। स्टार सिस्टम बुरा या अच्छा है मैं इसके ऊपर कमेंट नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वो बहुत लिमिटेड सिस्टम है। बहुत अच्छा है कि ये दुनिया ओपन हो गई हम सबके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को अपना स्किल दिखाने का मौका मिला और बहुत सारे लोग इस स्किल को देखने के लिए तैयार हैं। और इसमें जो एक कठिन बात है वो ये है कि फेलियर का मार्जिन बहुत छोटा है, क्योंकि हॉल में अगर आपने टिकट खरीद लिया और आप बैठ गए, अगर कम भी लग रहा है मामला, कमजोर भी लग रहा है, तो भी आपने टिकट खरीद लिया, you have already spent money, it has already gone into the books, तो अब आप पिक्चर देख के निकलोगे ना, लेकिन यहाँ पर आप क्लिक अवे कर जाओगे।
गुरमीत आपसे मेरा सवाल रहेगा कि ओटीटी प्लेटफॉर्म से एक इंटरनेशनल रिकॉग्निशन भी मिलने लगी है। पहले फिल्में सिर्फ भारत में रिलीज होती थी और अब ओटीटी के जरिए आप इसे पूरी दुनिया में देख सकते हैं। हम खुद देखते हैं अलग अलग ओटीटी प्लेटफॉर्म पे, यूरोपियन कंटेंट देखते हैं हम। आपको क्या लगता है, क्या ओटीटी के बाद भारत अपनी पहचान कंटेंट को लेकर और हिंदी कंटेंट को लेकर क्या पूरे विश्व पर बना सकता है आने वाले सालों में?
बिल्कुल, आई थिंक वो ऑलरेडी शुरू भी हो गया है। तो अगर आप देखो भी तो देर आर काफी सारे कॉन्नोइजर्स हैं या बाहर के लोग हैं अलग अलग कंट्रीज में जो इंडियन शोज को भी और फिल्मों को रिव्यू भी करते हैं, और वो वहां तक भी तो ऑब्वियसली उनके मार्केट्स में भी कंटेंट जा रहा है, लोग देख रहे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। जैसे आपने करेक्टली बोला कि हम लोग भी स्पेनिश सिनेमा देखते हैं या लैटिन अमेरिकन सिनेमा देखते हैं, यूरोपियन देखते हैं, तो ऐसे ही अभी आर सिनेमा इज अवेलेबल फॉर देम टू वॉच। एंड वेयर अर्लियर इट वॉज जो हमारी फिल्म्स थी वो एसेंशियली एस्केपिस्ट सिनेमा ज्यादा था, जो प्राइमरीली बिग बजट फिल्म्स जो थी वो थी। अभी नाउ विद ओटीटी कंटेंट हैपनिंग देयर इज अ लॉट मोर रियल स्टोरीज दैट आर मोर इंडियन एंड वेयर दे गेट टू सी अ लॉट मोर ऑफ व्हाट आवर वर्ल्ड इज लाइक, जो शायद उनको ज्यादा फैसिनेट भी करेगा।
पुनीत, गुरमीत के जवाब से ही एक और सवाल मेरे दिमाग में आ रहा है, वो ये है कि क्या अब आपको पता है, क्योंकि अब पूरी दुनिया खुल गई है कंटेंट को लेके, जब आप ओटीटी पे रिलीज करते हैं तो पूरी दुनिया आपका कंज्यूमर बन जाता है, क्या राइटर के तौर पर वो बात दिमाग में प्ले करती है लिखते वक्त कि इसे इंटरनेशनल ऑडियंस भी देखेगा, क्या ऐसा होता है?
नहीं, मेरे साथ तो नहीं होता। दूसरा, मेरे को ये भी लगता है विकास की कोई भी कहानी इंटरनेशनल ही होती है, इन अ सेंस की इमोशंस तो सेम ही है ना। अगर मेरे बच्चे को चोट लगेगी तो क्या फर्क पड़ता है कि मैं हिंदुस्तानी फादर हूँ या अमेरिकन फादर हूँ या टर्किश फादर हूँ, मेरे को दुख तो होगा ही। तो मुझे लगता है कि इमोशन तो सेम ही है। अब यह है कि हमारी कहानी की रीच वहां तक होती थी कि नहीं, जो अब होने लगी है या आने वाले सालों में और भी होगी। तो मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग पर्सनल बिलीफ है कि देयर शुड बी इंडियन स्टोरीज विच कैन बी टोल्ड, शुड बी टोल्ड इंटरनेशनली, जिसको पूरी दुनिया देख के बोले कि हाँ यार हिंदुस्तान में बनी है लेकिन पूरी दुनिया में देखने लायक कहानी है। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि वो समय आ गया है और आने वाले समय में हम और ज्यादा स्पीड से उसी दिशा में आगे बढ़ेंगे।
बहुत बहुत खूब, आप लोगों ने वक्त दिया, मजा तो बहुत आ रहा है, मेरा मन भी है और भी सवाल किए जाएं, लेकिन मुझे जानकारी थी कि जो समय है वो बहुत कम है हमारे पास, और मेरी यही उम्मीद है कि आप लोग इसी तरह से सिर्फ भारत ही नहीं पूरी दुनिया के जितने भी दर्शक हैं उनको एंटरटेन करते रहेंगे। और आप लोगों ने वक्त निकाला, हमें समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।
SBS हिंदी, हमारी कहानियां फेसबुक पर।